नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का, ये सब हिंदू है यहाँ पे, ये सब हिंदू है। कि तीन बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, दो बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं, और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले।
नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी का पहला भाषण कैसा था, इस सवाल का जवाब आप खुद भी हासिल करें, उनका वीडियो देखें, क्योंकि आज का भाषण ऐसा था कि आप केवल राहुल गांधी का मूल्यांकन नहीं कर सकते, सरकार का भी करना होगा और स्पीकर का भी। 10 साल में आज पहली बार देखने को मिला कि जब नेता प्रतिपक्ष बोलने के लिए उठे तब कैसे पूरी सरकार बार बार उठती रही। जब तक राहुल गांधी खड़े रहे, सरकार की तरफ से भी कोई ना कोई खड़ा होता रहा। आज राहुल गांधी अकेले अपने पांव पर खड़े नहीं थे, उन्हें रोकने के लिए उनके हमलों से परेशान सरकार भी अपने पांव पर खड़ी रही। राहुल को सत्यापन के नाम से डराया गया, मगर राहुल डरे नहीं, बल्कि आज का उनका भाषण डर के ही खिलाफ था। राहुल ने जिस तरह से डर और धर्म को परिभाषित किया उस पर बात तो होगी ही, लेकिन आज सदन में उन्होंने बीजेपी और मोदी सरकार को उनकी पिच पर आकर खेलने के लिए मजबूर कर दिया। जिन मुद्दों पर बीजेपी चुप रहा करती थी उन मुद्दों पर उसे बोलना पड़ा। अगर राहुल गांधी के भाषण का मूल्यांकन करना है तो सत्ता पक्ष की तरफ से आती आवाजों को देखिए, आपको पता चलेगा कि उनका भाषण कैसा था। इतने सारे नियमों का उल्लेख किया गया सरकार की तरफ से, अमित शाह से लेकर अन्य सांसद स्पीकर को उनके ही नियमों की याद दिलाते रहे और स्पीकर से अपने लिए संरक्षण मांगते रहे। ऐसा कभी नहीं हुआ और ये आज ही हुआ है, 1 जुलाई के दिन, जब राहुल गांधी के हमलों से सत्ता पक्ष के दिग्गज सदन में स्पीकर से संरक्षण मांगने लगे। सरकार नियमों से राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करती रही, लेकिन राहुल नेता प्रतिपक्ष के नियमों से उन्हें घेरते रहे। जब तक आप सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया को नहीं देखेंगे आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आज राहुल गांधी का भाषण कैसा था। प्रधानमंत्री ने तो गंभीरता से कहा कि वे नेता प्रतिपक्ष की बातों को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन उसमें कितनी गंभीरता थी आपको उनकी बेंच की तरफ से आती आवाजों से अंदाजा हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष से उम्मीद की जाती है कि जब वह बोले तो सरकार को परेशान कर दे। यही हुआ, सरकार के मंत्री और बीजेपी के सांसद नियमों की किताब में अपना सहारा ढूंढने लगे। राहुल की बातों को सत्यापित करने की मांग होने लगी और नियम पढ़कर बताया जाने लगा कि नेता प्रतिपक्ष को किस तरह से, किस तरफ देखते हुए और किन किन बातों का जिक्र नहीं करते हुए भाषण देना चाहिए और भाषण देते समय किस तरह से उन्हें पेश आना चाहिए।
इस सदन के नियमों की पुस्तिका, इससे कुछ सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है? आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो, मान्यवर हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता।
56 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ, अगर कोई सदस्य स्पीकर साहब के ध्यान में लाने के बाद इररिलेवेंट और लगातार किसी विषय को बार बार दोहराता है तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उस सदस्य को निर्देशित करके रोक सकते हैं, आप अपने अधिकार का प्रयोग कर लें।
ये संविधान की बात कर रहे हैं सर, और इसी संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी को हिंसावादी करार नहीं दे सकता है।
मैं समझ रहा हूँ कि विपक्ष के नेता इन आते पहली बार बोल रहे हैं, मगर नियमों के पुस्तक के बाहर वो नहीं जा सकते। ये स्टेटमेंट करे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी, तो कैसे सदन में चल सकता है माननीय?
मैं दो नियम, रूल 349 और रूल 352 के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले तो प्रतिपक्ष के नेता को बोलने का तरीका आना चाहिए। 349 जो 12 है वो स्पष्ट रूप से कहता है, शैल नॉट सिट और स्टैंड विद बैक टुवर्ड द चेयर।
10 साल तक जो बीजेपी राहुल को राहुल ही नहीं समझती रही, प्रधानमंत्री एक बेहद खराब चैनल के इंटरव्यू में कहते हैं कौन राहुल, और उस बेहद खराब चैनल के तमाम एंकर उनके साथ हंसते हैं। आज वही बीजेपी के सांसद नियमों की किताब उठाकर राहुल को बता रहे थे कि नेता विपक्ष को कैसे भाषण देना चाहिए, जिस राहुल का बीजेपी यह कहकर मजाक उड़ाया करती थी कि उन्हें लॉन्च करने की 4 बार कोशिशें हुई हैं मगर सफल नहीं हुई। वही राहुल गांधी आज बीजेपी पर इस तरह भारी पड़ने लगे जैसे बीजेपी राहुल के सामने 4 बार से खड़ी होने की कोशिश कर रही थी। आज के भाषण की सबसे अच्छी बात यह रही कि 10 साल से जिस लोकसभा में एक तरफा माहौल बना रहा, केवल मोदी मोदी हो रहा था, आज राहुल राहुल भी होने लगा। 10 साल से लोकसभा में जो सूनापन आ गया था, आज वह दोनों तरफ से आ रही आवाजों से गूंजने लगी। राहुल गांधी का भाषण छोड़िए, आज लग रहा था कि लोकसभा में लोकतंत्र बोल रहा है, उसकी आवाज में अभी जान बाकी है। आज के वीडियो में बहुत कुछ होगा, लेकिन काफी कुछ नहीं भी हो सकता है, क्योंकि संभव नहीं कि सभी बातों को यहां समेट दिया जाए। आप इस वीडियो को पूरा देखने का धीरज रखिए। 1 जुलाई का यह दिन याद रखने का दिन है। हम शुरुआत वहां से करते हैं जहां राहुल गांधी ने अपने भाषण का अंत किया। आपको याद होगा जब ओम बिरला स्पीकर चुने गए, तब नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों उन्हें आसन तक छोड़ने गए। राहुल गांधी ने हाथ मिलाया और प्रधानमंत्री ने भी हाथ मिलाया। फिर इस तस्वीर को लेकर काफी चर्चा हुई कि स्पीकर ने प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन झुक कर किया और राहुल गांधी का अभिवादन सीधे तने रहकर किया। राहुल गांधी ने इसी प्रसंग का जिक्र कर आज बता दिया कि वे इस सदन में सीमा में भी रहेंगे और सीमाओं को तोड़ते भी रहेंगे।
नाउ स्पीकर सर, व्हाई आई एम सेइंग दिस एंड फॉरगिव मी फॉर सेइंग दिस, बट व्हेन यू वर बीइंग पुट ऑन दैट चेयर आई वॉक्ड देयर टू हेल्प यू टू वॉक विद यू टू द चेयर and I shook hands with the Prime Minister and I shook hands with you. And then I walked to your chair and you are the final arbiter of the Lok Sabha. You're the final word here. What you say fundamentally defines Indian democracy. You don't allow us to speak, you allow us to speak, you allow them to speak, you don't allow us to speak. All these things define Indian democracy. Speaker, sir, there are actually 2 people sitting in that chair. There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand.
ये आसन के सामने आरोप है, ये चेयर के सामने आरोप कर रहे हैं मनु।
Now with all respect, sir. Such a
बैठिए प्लीज मिनट प्लीज, एक मिनट प्लीज 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 ओके प्लीज नो।
माननीय प्रतिपक्ष के नेता, एक मिनट प्लीज,
माननीय प्लीज 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 नो नो।
प्रतिपक्ष के माननीय नेता, माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी, जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो, मुझे यही सिखाया है, और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो, यही मुझे सिखाया है। और इसीलिए
स्पीकर सर, अगर आप
हाँ, मैं इस बात को आसन से कह रहा हूँ कि मेरी संस्कृति और संस्कार यही है कि बड़ों का झुककर और आवश्यक हो तो पैर छूकर सम्मान करो, और बराबर जो उम्र से छोटे हैं उनसे बराबर का व्यवहार करो।
स्पीकर सर,
ये हमारी संस्कृति संस्कार है और मैं इस संस्कृति संस्कार की पालन करता हूँ।
स्पीकर सर, आपकी सर, स्पीकर सर, आपकी बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। स्पीकर सर, स्पीकर सर, आपकी बात को रिस्पेक्टफुली
बैठिए ना।
स्पीकर सर, मैं आपकी बात को रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर आपको कहना चाहता हूँ कि इस हाउस में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं होता। स्पीकर सबसे बड़ा है, हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए, और मैं आपके सामने झुकूंगा और सारा का सारा ऑपोजिशन आपके सामने झुकेगा। ये लोकतंत्र है स्पीकर सर, आप इस हाउस के लीडर हैं, आपको किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए।
इसलिए आज राहुल गांधी के भाषण के समय जो भी हुआ वह लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली में प्रशिक्षण का सिलेबस बन सकता है। केवल राहुल गांधी के कारण नहीं, सत्ता पक्ष के कारण भी और स्पीकर की वजह से भी। आज सत्ता पक्ष ने लोकसभा के अध्यक्ष पर आक्रामक रूप से दबाव बनाया, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने सुना जरूर मगर अनदेखा कर दिया। आज राहुल गांधी के भाषण से अदाणी और अंबानी के जिक्र को निकालने की मांग नहीं उठी, ना ही स्पीकर ने अपनी तरफ से इसे हटाया। इसी सदन में अदाणी का नाम लेने पर सदन की कार्यवाही से निकाल दिया गया था। आपको याद होगा जब राहुल गांधी ने अदाणी और मोदी की एक तस्वीर दिखाई थी, उसे कार्यवाही से निकाला गया था। तो आज के भाषण से केवल राहुल गांधी की वापसी नहीं हुई है, बल्कि इसकी भी वापसी हुई है कि आप देश की लोकसभा में अंबानी और अदाणी की बात कर सकते हैं।
स्पीकर सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है पब्लिक में, मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। तो पता नहीं उस टाइम 8 बजे भगवान का मैसेज आया होगा हिंदुस्तान, वही। मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। भगवान का मैसेज आया होगा मोदी जी, नोटबंदी कर दीजिए, नोटबंदी कर दिया, डायरेक्ट ऊपर से आया मैसेज, ऑर्डर आया खटाक। और अलग अलग ऑर्डर आते हैं, अदानी जी वाला ऑर्डर आता है बंबई एयरपोर्ट, अदानी जी का ऊपर से ऑर्डर आता है खटाक खटाखट 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 ऑर्डर आते हैं। तो नोटबंदी कर दी, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो हैं, जो हिंदुस्तान की रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उड़ा दिया, खत्म कर दिया। आज नतीजा यह है कि ये जो भी करना चाहे करें, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। जॉब क्रिएशन बैकबोन इज ब्रोकन, फिनिश, खत्म।
नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपने पहले भाषण में राहुल गांधी लोकसभा में वे एक ही साथ कांग्रेस के नेता के रूप में बीजेपी पर हमला कर रहे थे तो नेता विपक्ष के तौर पर सारे विपक्ष की आवाज बनते दिखे और पूरे विपक्ष की तरफ से सरकार को संदेश दे रहे थे कि विपक्ष यहां संवाद और सहयोग के लिए भी है। अगर विपक्ष नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग करता है या किसी और मुद्दे पर तो चर्चा कीजिए, हम हमेशा आक्रामक नहीं रहेंगे, हम संवाद भी करना चाहते हैं।
स्पीकर इज द लास्ट वर्ड इन द लोकसभा एंड इन दैट स्पिरिट स्पीकर इज द लास्ट वर्ड इन द लोकसभा एंड इन दैट स्पिरिट एज मेंबर्स ऑफ द लोकसभा वी आर सबसर्वियंट टू द स्पीकर। आई बिलीव दैट। नाउ देयर माइट बी पीपल इन दिस रूम हु थिंक दे आर नॉट, but I and I think the entire opposition believe that we are subservient to you, sir. And we will listen to what you say and we will bow in front of you. But the only thing I request, Speaker, sir, is it is important that there is fairness in this house.
Yes, yes.
Now, I gave a speech, Speaker, sir, and it was interrupted throughout.
Yes.
Now, this time is going to be taken away from my colleagues. And I think that is unfair. Finally, I'd like to say that the principles that allowed us to fight are in our traditions. Truth, courage, non-violence, and they're in all our religions. And what you have come to represent today is untruth, a complete lack of courage, and violence. And my recommendation to you, if you take it, this country has a government and you are the government. And you are, whether we like it or not, you are the government of India. Elected by the people. And I agree to that. But I would say to you that as individual members, as the cabinet, you do not spread fear in this country. That you do not spread hatred in this country. That you listen to the farmers of this country, you listen to the students of this country. When the opposition says to you, let's have a debate for one day, have it. It's not going to harm anybody. They're going to love you for it. The students of India are going to say, we love the government because they allowed us our voice, they let us speak for one day. So, do not spread hatred. Do not spread violence. Do not be fearful. Even the BJP members here, even the cabinet members, do not be fearful. You have a constitutional position. You are individuals and then you have a constitutional position. Rajnath Singh ji is an individual and he's the defense minister of India. And that is the way this country has to be run. And we as the opposition, don't take us as your enemies. We are not your enemies. We are here. We are sincerely here to make your work easier, as long as you follow the basic principles that we have stated. And these principles are Shivji's principles. They are the principles of Shivji. Har Har Mahadev, you can say.
To make the government.
This is basically what I have explained here today is the concept of Indian leadership in all religions. Respect, affection, ahimsa, and always standing up for the truth. And I'm more than happy, all of us are more than happy to discuss anything you want without being nasty, without being aggressive, anything you want, we are ready to discuss. So please let us work together to take this country forward. You are the government. We have to accept that. You got 240 seats.
राहुल गांधी ने कहा कि यह सच्चाई है कि आज आप सरकार में हैं, हम विपक्ष में हैं। मैं आपको बधाई देता हूं, तो सत्ता पक्ष की तरफ से तालियों की आवाज नहीं आई। राहुल ने तब भी कहा, मैं बधाई दे रहा हूं, कम से कम स्वीकार तो कर लीजिए, मगर तालियां नहीं आई। साफ था भाषण खत्म होते होते राहुल ने बीजेपी को थका भी दिया। 10 साल में आज पहली बार राहुल गांधी को रोकने के लिए बीजेपी को इतनी मेहनत करनी पड़ी और रोक भी नहीं पाई।
I congratulate you on that. At least accept it. Accept to kar lijiye.
They're not happy.
Okay, you're not happy.
नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी ने उन मुद्दों को उठाया जिस पर सरकार के साथ 3 महीने के चुनाव में आमना सामना नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे चुनाव में अपने भाषणों में अग्निवीर पर कोई जवाब नहीं दिया, जबकि विपक्ष कहता रहा कि सत्ता में आ गए तो अग्निवीर योजना समाप्त कर देंगे। तब भी प्रधानमंत्री ने मतदाताओं को अग्निवीर की तारीफ में भाषण नहीं दिए, लेकिन आज वे नेता सदन के तौर पर सदन में बैठे रहे और राहुल गांधी अग्निवीर का मुद्दा उनके सामने उठाते रहे। यह वो मुद्दा था जिस पर चुनाव में आमना सामना नहीं हुआ मगर आज हो गया।
अध्यक्ष महोदय,
एक आदमी सब पर भारी।
अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश।
गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर।
अथवा सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में अध्यक्ष,
ठीक है सर, देखिए स्पीकर सर, देखिए राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है, सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है।
पॉइंट ऑफ ऑर्डर है माननीय, अब सदन के सामने 2 स्टेटमेंट हुए, एक हुआ विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए माननीय, ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है माननीय, सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय।
अग्निवीर की सच्चाई मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे रखी है और राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है, जो रियलिटी है वो हिंदुस्तान की सेना को मालूम है, वो अग्निवीरों को मालूम है। उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई तो उनको मालूम है, उनको मालूम है सच्चाई कौन बोल रहा है।
नेता प्रतिपक्ष के भाषण की शुरुआत में ही सत्ता पक्ष की ओर से पहले भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगे, फिर जब जय श्री राम के नारे लगे तो राहुल गांधी ने जवाब में जय संविधान कहा, उन्होंने पीछे बेंच से संविधान की कॉपी मांगी और फिर उसे हाथ में उठाकर कहा जय संविधान, इसकी हमने रक्षा की है, देश ने मिलकर रक्षा की है। और अच्छा लग रहा है कि अब हर 2-3 मिनट पर बीजेपी के लोग संविधान संविधान कह रहे हैं।
लास्ट 10 ईयर्स देयर हैज बीन ए सिस्टमैटिक अटैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन द आइडिया ऑफ इंडिया एंड ऑन एनीबॉडी who opposed there has been just warming up right now abhi warm up ho raha hai to there was a systematic full scale assault on the idea of India, on the constitution and also on millions and millions of people who resisted the ideas being proposed by the BJP, who resisted the attack on the Constitution. Many of us personally were attacked. In fact, some of our leaders are still in jail.
Shame.
One of our leaders has just recently been released. Another one is still in jail. And not only the opposition, but anybody who resisted the idea of concentration of power, of concentration of wealth, of aggression on the poor, of aggression on Dalits, minorities, tribals, was crushed. Violently crushed. People were put in jail. People were threatened. And I myself was attacked.
Rahul Gandhi aaj vipaksh ki taraf se bol rahe the, lekin Congress party ki taraf se bhi vip bolte rahe. उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने कहा कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये ठेका नहीं है बीजेपी का, हम सभी हिंदू हैं। हुआ यह कि राहुल गांधी आज अपने साथ भगवान शिव की तस्वीर ले आए। उन्होंने शिव भगवान के सहारे धर्म के भीतर की हिंसा और अहिंसा को रेखांकित करना शुरू कर दिया। जब भी वे शिव की तस्वीर दिखाते, सत्ता पक्ष से कोई ना कोई सदस्य खड़ा हो जाता, नियमों का हवाला देता कि आप तस्वीर नहीं दिखा सकते। स्पीकर ने भी राहुल गांधी को जिम्मेदारी से भाषण देने की सलाह दी, मगर उन्होंने भी शिव की तस्वीर को सदन की कार्यवाही से नहीं निकाला और ना ही साफ साफ निर्देश दिया कि अब आप शिव की तस्वीर नहीं दिखाएंगे। जिस राजनीति से बीजेपी आज तक सबको घेर रही थी, राहुल गांधी शिव की तस्वीर से उसी बीजेपी को निहत्था कर रहे थे।
I'd like to start by showing an image of our refuge. Okay? सर शिवजी की फोटो नहीं दिखा सकते सर?
एक मिनट माने सदस्य।
सर शिवजी की फोटो मना है सर?
एक मिनट।
सर मना है तो रख देता हूँ सर।
नो, एक मिनट, प्लीज। आपने सवाल उठाया, आपके माननीय सदस्यगण 353 का नियम बता रहे थे, 352 का नियम बता रहे। नो, प्लीज, नो। आपने कहा इस नियम प्रक्रिया से सदन चलना चाहिए, नियम प्रक्रिया में कोई भी प्ले कार्ड, कोई भी चिन्ह को सदन में नहीं दिखाया जा सकता, आपने कहा नियम से, ऐसा नहीं है।
माइक दीजिए सर
जी।
सर क्या इस हाउस में शिव जी की फोटो दिखाना मना है?
माननीय सदस्य
आप बस ये बता दीजिए,
माननीय सदस्य
सर मना है या नहीं
कोई भी चित्र को दिखाने के?
तो शिव जी का चित्र इस साधन इस हाउस में दिखाना मना है?
दरअसल राहुल गांधी ने शिव का उदाहरण यह समझाने के लिए दिया कि उन पर प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर 20 से ज्यादा केस किए गए, 2 साल की जेल की सजा हुई, उनका घर ले लिया गया। लेकिन मैंने यह सब शिव के सहारे झेला, इसका सामना किया, क्योंकि शिव से मुझे निडर होने की शक्ति मिलती है।
I myself was attacked by order of the government of India, by order obviously of the Prime Minister of India. 20+ cases, 2-year jail sentence, my house taken away, no problem.
Shame.
Relentless attack in the media, 24/7, every single day, abuse, attack.
Shame.
And then the most enjoyable and beautiful part of it, 55 hours of interrogation by the ED.
Shit.
No, which I really enjoyed. Because by the end of the interrogation, the officer off camera, he switched off the camera and then he asked me, Rahul ji, you've been sitting here 55 hours. आप पत्थर जैसे हो, आप हिलते क्यों नहीं हो? मुझसे सवाल पूछा उसने। तो जब ऐसा आक्रमण होता है, व्हेन देयर इज एन अटैक लाइक दिस ऑन यू, यू ऑब्वियसली नीड रेफ्यूज, यू नीड अ प्लेस, और यू नीड आइडियाज दैट डिफेंड यू.
10 साल से नेहरू के आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला होता रहा. देश के जरूरी बुनियादी मुद्दों को किनारे कर फालतू की एक बहस रची गई, जैसे कोई बहुत बड़ा काम किया जा रहा है, कोई नई इमारत बनाई जा रही है. एक ऐसे समय में जब बीजेपी और समर्थकों को लगने लगा कि आइडिया ऑफ इंडिया की अवधारणा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, राहुल गांधी उसी आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर खड़े हो गए जिसे ध्वस्त किया गया था. आज राहुल गांधी ने उसकी बुनियाद रखी और इमारत खड़ी करनी शुरू कर दी.
स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है. पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता है, समझता है. एवरीबॉडी नोज दिस इमेज. स्पीकर सर, व्हाई आई गॉट दिस इमेज इज बिकॉज देयर आर सर्टेन आइडियाज इन दिस इमेज दैट वी डिफेंड, दैट द ऑपोजिशन डिफेंड्स. द फर्स्ट आइडिया इन द इमेज दैट वी डिफेंड इज द आइडिया ऑफ कन्फ्रंटिंग आवर फियर, ऑफ नेवर बीइंग स्केयर्ड. That idea is represented in this image, which you are not allowing me to show, by a snake that is placed right near the neck of Shivji. The idea behind that is never be scared of anything that you face. In fact, Shivji places death 1 inch from his neck, and that is the spirit with which we fought when we were in the opposition. From this idea of resisting, we are still in the opposition. I know that, and I'm happy and proud to be in the opposition, because for us there is more than power. There is truth. For you there is only power. That is the only place you want to be. For us there is truth, and this is a symbol of truth. So when Shivji places the snake near his neck, what he is saying is, I will accept the truth and I will not back down from the truth, and that is what we have said.
नेता प्रतिपक्ष ने बता दिया कि उन्होंने बीजेपी के सामने धर्म के विषय पर बोलने की भाषा हासिल कर ली है. वे शिव को निडरता और अहिंसा के प्रतीक के रूप में स्थापित करते रहे. इसके बाद उन्होंने भय के कई रूपों की व्याख्या की. बीजेपी ने उम्मीद नहीं की होगी कि राहुल अपने साथ शिव की तस्वीर लेते आएंगे. ज्यादा से ज्यादा यही सोचा होगा कि फिर से उसी अडानी की तस्वीर लेकर आएंगे. पिछली बार वे अडानी की तस्वीर लेकर तो आए थे जिसे सदन की कार्यवाही से निकाल दिया गया, लेकिन इस बार शिव की तस्वीर कैसे निकाली जा सकती थी? मुश्किल बीजेपी के लिए भी थी और स्पीकर के लिए भी. बीजेपी भी साफ साफ मांग नहीं कर रही थी कि इस तस्वीर को कार्रवाई से या रिकॉर्ड से निकाला जाए. तमाम हंगामों के बीच शिव की तस्वीर मौजूद रही और राहुल गांधी का भाषण भी चलता रहा, मगर अहिंसा और निडरता की बात करते करते राहुल केवल वहीं तक नहीं रुके, इस्लाम और सिख धर्म से भी उदाहरण देने लगे.
तो इस्लाम में भी कहा गया है, मैं पढ़ता हूँ. इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, द प्रॉफेट पीस बी अपॉन हिम सेड, ही गॉड सेड, हैव नो फियर, आई एम विद यू हियरिंग एंड सीन. मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है. और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है. उसके बाद गुरु नानक जी की ओर चलते हैं. वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा. जिस धर्म पर आप हर रोज आक्रमण करते हो, गुरु नानक जी जो
Please.
मान्य सदस्य प्लीज
गुरु नानक जी के चित्र में भी
हम इनको इस तरीके से पूछते हैं, आप इस तरीके से टेबल पे मत रखो।
सर कहाँ रखूं सर?
तरीका ठीक
सर कहाँ रखूं? यहाँ रख दूं सर?
आप यहाँ मत,
यहाँ रख देता हूँ सर। सर गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत डराओ मत। और पंजाब से गुरु नानक जी मक्का तक गए, थाईलैंड तक गए, अफगानिस्तान गए, श्रीलंका गए, किसी से हिंसा नहीं की, अहिंसा की बात की, सत्य की बात की और किसी को उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं डराया। उसके बाद जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपके आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। उसके बाद बुद्ध भगवान अभय मुद्रा, डरो मत डराओ मत, अहिंसा मतलब। और अंत में महावीर, डराओ मत अभय मुद्रा, मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में तीन फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया, उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है, यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की, डरो मत डराओ मत, डरो मत डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं।
राहुल ने सेक्युलरिज्म धर्म निरपेक्षता का जिक्र नहीं किया, लेकिन धर्म के जिन शानदार उदाहरणों को उठाने से लोग डरने लगे थे, उन्हें लगता था कि ये सद्गुण नहीं है, राहुल ने उन्हें सदन के भीतर सद्गुण के रूप में स्थापित किया, बताने का प्रयास भी कि धर्म का मार्ग अहिंसा का ही है, नफरत का नहीं। राहुल ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा, लेकिन फिर भी बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया, आस्था को ठेस पहुंचाई गई है। लेकिन राहुल अपनी जगह से हिले नहीं। आप भी पूरा भाषण सुन सकते हैं किस जगह पर और किस तरह से आस्था को ठेस पहुंचाई गई है।
माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे
सर, मुझे
ध्यान रखना चाहिए।
ये जो
ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है।
बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का, ये सब हिंदू हैं यहाँ पे, ये सब हिंदू हैं।
एक बार के लिए लगा कि यहां से बहस भटक जाएगी और सदन की कार्रवाई रुक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बीजेपी के सदस्यों ने भी एतराज जताया और राहुल ने उसके बाद अपना भाषण जारी रखा। उम्मीद थी कि राहुल गांधी आज मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर भी खुलकर बोलेंगे। जिस तरह से वे अहिंसा और अभय की बात कर रहे थे, उन्हें इस पर भी विस्तार से बोलना चाहिए था। एक वक्त आया जब लगा कि वे बोलेंगे, लेकिन नतीजे आने के बाद जिस तरह से मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, राहुल को बोलना चाहिए था। संसद चल रही है, नेता विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी हो जाती है कि सदन में ही बोले। जब वे हिंसा को परिभाषित कर रहे थे, तब भी इन घटनाओं का उदाहरण तो दे ही सकते थे।
हिंसा, नफरत माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, और माइनॉरिटीज ने क्या किया? माइनॉरिटीज ने क्या किया? हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं। पत्थर जैसे हिंदुस्तान के साथ एक साथ खड़े हैं, देशभक्त हैं, और आपने सारे के सारे माइनॉरिटीज पर आक्रमण किया, उनके खिलाफ हिंसा, नफरत फैलाई।
नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को महंगाई से लेकर अग्निवीर पर खूब घेरा और खूब बहस की। राहुल गांधी ने याद दिलाया कि 700 किसान शहीद हुए, लेकिन उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सदन में मौन नहीं रखने दिया गया। मणिपुर प्रधानमंत्री नहीं गए, नीट पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया।
सी सर, स्पीकर सर, नीट स्टूडेंट्स स्पेंड इयर्स एंड इयर्स प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम, देयर फैमिली सपोर्ट्स देम फाइनेंशियली, इमोशनली, एंड द ट्रूथ इज that NEET students today do not believe in the exam. Because they are convinced that the exam is designed for rich people, not meritorious people. I have met a number of NEET students, every single one of them tells me that the exam is designed to create a quota for rich people and to create a passage for them into the system, shame, and is designed not to help poor students. Now, इससे भी बहुत डर होता है। महीनों पढ़ाई करते हैं, ये पता नहीं कि भैया एग्जाम लीक हो जाएगा नहीं होगा, अगर पास भी हो गए तो पैसा कहां से आएगा, तो उधर भी इन लोगों ने भय डालने का काम किया। तो जहां भी ये देखते हैं ये भय डालते हैं, सेना में, युवाओं में।
देश की जनता ने 2024 के नतीजे को इसी तरह गढ़ा है कि अब वहां प्रधानमंत्री मोदी को भी सुनना होगा और नेता प्रतिपक्ष को भी बोलने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरी विनम्रता और एकाग्रता से नेता प्रतिपक्ष का भाषण सुनते नजर आए। उन्होंने सुना जब राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री अरबपतियों के लिए काम करते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी के जवाब देने की बारी है। आज का दिन स्पीकर के लिए भी आसान नहीं था। सरकार की तरफ से दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन ओम बिरला विपक्ष को चेता तो रहे थे, मगर अपने आदेशों से विपक्ष की आवाज बंद नहीं कर रहे थे। उन्होंने पूरे भाषण के दौरान किसी शब्द को कार्यवाही से हटाने के लिए नहीं कहा। अंत में जरूर कहा सत्यापन होगा। आज पता चल गया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आ गया है। आज सदन में सरकार विपक्ष की तरह उत्तेजित थी और विपक्ष सरकार की तरह हमलावर। कमी महसूस हुई तो किसी अच्छे शायर की, जो इस शानदार मौके पर उठकर कोई मौजू शेर पढ़ देता। अफसोस कि जिस दिन सभा में शेर ढेर किए गए, उस दिन किसी ने अच्छा शेर नहीं पढ़ा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।